ओम शांति। पहला क्वेश्चन है, मुरली में आता है कि बाबा के साथ सतगुरु, टीचर, भाई, ये संबंध का अनुभव बाबा के, आपने बाबा के साथ कैसे किया?
कौन कौन से
टीचर,
भाई, बाप, वो सब नहीं, बस ये तीन का ही पूछा है। अच्छा, सतगुरु तो ऐसा है कि हमने जैसे कल सुनाया था, भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे गुरुओं के पास गए थे। वो भक्ति मार्ग में कहते कृष्णम वंदे जगत गुरु, और गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है। तो पहला तो हम कहेंगे, यहाँ इस यज्ञ में आने के बाद बाप के भी संबंध से पहले हमने जो बाबा के साथ संबंध जोड़ा था वो था गुरु का, क्योंकि हमें गुरु की तलाश थी जो प्रकाश कर दे जीवन में और भगवान से मिला दे। पर यहाँ आने के बाद ऐसा हुआ कि ये पता चला कि भगवान ही गुरु, तो इसलिए गुरु से वो जो संबंध था वो बहुत ज्यादा निकट का था। रामायण में एक प्रसंग है, दशरथ आईना देखता है, उसे दिखता है कि मेरे बाल सफेद हो गए, और तब विचार आता है मेरी कोई संतान नहीं है। गुरु के पास जाता है और गुरु से अपनी बात कहता है, अपनी समस्या कहता है। ये नहीं कहता कि मुझे संतान चाहिए, वो कहता है ऐसा कुछ करो, जाई विधि हो ही नाथ हित मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए जब हम ज्ञान में आए तो पहला संबंध तो हमें लगता है कि हमने जो बाबा से जोड़ा वो था गुरु का, सदगुरु का, कि वो मेरा गुरु है और उसको मेरे हर प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के पास हर आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर होता है। तो पहला तो गुरु, और ये संबंध अब भी है। जब भी आध्यात्मिक कोई दुविधा होती है, वैसे बहुत कम होती है, पर जब होती है तो जैसे बाबा के सामने, गुरु के सामने, सदगुरु के सामने समर्पण कि अब तुम बताओ इसमें मैं क्या करूं, जाए विधि हो ही नाथ हित मोरा, मेरा कल्याण जिसमें हो ऐसा कोई मार्ग मुझे बताओ। दूसरा बताया भाई, दूसरा क्या पूछा भाई, नहीं भाई, छोटा कि बड़ा? भाई वाला संबंध जैसे कल कोई सुना रहा था, मेरा भाई मुझे बाप समान पालना देता है। कौन से ग्रुप का था भाई का? है ग्रुप, हाँ पीछे। मेरा भाई मुझे बाप समान पालना देता है। तो भाई का संबंध तो ऐसा है कि जैसे बड़ा भाई, और वो बाप ही है, भगवान ही है। तो जैसे बड़ा भाई मदद करता है, गाइड करता है, वैसे ये भाई भी बार 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 गाइड करता है। और इससे भी ज्यादा मेडिकल प्रैक्टिस में जब कोई बहुत टफ केस हो जाती है, जब कुछ समझ में नहीं आता है, तब ये संबंध भी काम आता है, एज अ भाई भी और एज अ सुप्रीम सर्जन, एज अ डॉक्टर, एज अ सुप्रीम फिजिशियन, गाइड। भाई जैसा गाइड होता है, हम उसको जैसे गाइड के रूप में देखते हैं और वो हमको गाइड करता है। तीसरा क्या पूछा था? तीसरा भी था कुछ, टीचर। हाँ, तो टीचर तो वो है ही, और हम उसको टीचर, मेडिकल टीचर के रूप में ज्यादा देखते हैं, एज अ मेडिकल टीचर। हमको याद है कुंज दादी अहमदाबाद कई समय तक रही, पेट में दर्द था और ठीक ही नहीं हो रहे थे। कितनी सारी सोनोग्राफी करा ली, कम से कम 20 सोनोग्राफी हो गई थी और बहुत सारी टेस्ट हो गई थी। फिर आखिर में लेके आ गया, फिर डॉक्टर अशोक मेहता मिले, तो उन्होंने कहा तुम जाकर एक बार दादी को देखो। तो दादी बहुत दर्द में थी, शांतिवन में थी, तो उसको इतना दर्द हो रहा था। तो हमने रिपोर्ट देखी, सब देखा, और फिर वो जो डॉक्टर थे अहमदाबाद के, उससे भी फोन पे बात की। तो उन्होंने कहा हमने तो जो कुछ करना था कर लिया, हमारे हाथ में कौन सा दर्द है ये समझ नहीं आ रहा है, क्या दर्द है, क्यों दर्द है, सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट में, पर दर्द तो बहुत ही है, और दवाइयाँ चालू है फिर भी ठीक नहीं हो रही। तो हम देख के आ गए, और फिर अमृत वेला, जैसे बाबा सुप्रीम डॉक्टर कहो, सुप्रीम फिजिशियन कहो, वो अमृत वेला इतना पावरफुल अमृत वेला था कि वो सारे रिपोर्ट्स जैसे हमको दिखाई देने लगे बिखरे हुए, और हमने जैसे अंदर ही अंदर लिंक किया कि क्या कारण हो सकता है, और बाबा को पूछा, और एकदम से जैसे कुछ टचिंग जैसा हुआ और फिर हम वापस गए और दादी को कहा आपको ऊपर चलना है और दादी को ऊपर हॉस्पिटल में लेके गए और फिर दादी का MRI कराया और उसमें फ्रैक्चर निकला पीछे। वो फ्रैक्चर के वजह से पेट में दर्द हो रहा था, रेफर्ड पेन, और जो कि सोनोग्राफी में नहीं था, किसी में भी नहीं था, वहां वो डायग्नोसिस पिक हुआ। तो टीचर हम उसको मेडिकल में ज्यादा देखते हैं, जब बहुत टफ केस होती है, पेशेंट बड़ी सी फाइल लेके आता है जिसमें ढेर सारी जगह पर जाया है और अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या किया जाए, तब बाबा को पूछते हैं तो वो टीचर के रूप में सिखाता है।
रात को स्वप्न आते हैं, डर लगता है, क्या करें, योग बहुत अच्छा लगता है, क्रैम्प भी आती है, अमृत वेला मिस हो रहा है, अमृत वेला नशा नहीं चढ़ता, 6 बजे क्लास में जाते हैं, धीरे धीरे नशा चढ़ता, सारा दिन कैसे रहे, पुराने संस्कार पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, डर लगा रहता है।
एक में कितने हैं? एक महिला रोज एक स्वप्न देखती है, स्वप्न में देखती है काली सी छाया उसका पीछा कर रही है और हर बार उठती है तो धड़कन बड़ी हुई, धड़ 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 धड़, रोज एक ही स्वप्न, एक बड़ी सी छाया उसका पीछा कर रही है, वो भाग रही है, पीछे से वो छाया है ऐसी बड़ी, उसको डरा रही है, परेशान। पर एक दिन स्वप्न थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, पीछे से काली छाया आ रही है और धड़ से वो नीचे गिरती है पीठ के बल और वो छाया उसके ऊपर आ जाती है। वो पूछती है तुम कौन हो, छाया से पूछती है। वो छाया राक्षस जैसी कहती है मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है। व्हाट डू आई नो, द ड्रीम इज योर्स। आधे से ज्यादा जो भय है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, हमने निर्माण किए वो भय, और जो सारे दिन भर हमको डराता है अवचेतन में, वो रात को स्वप्न में निकलता है बाहर, है कुछ नहीं, कल्पना है। अब इससे कैसे छूटे, पहले तो उस भय को ढूंढना है, कौन सा वो भय है। हमारे कुछ कुछ भय जो है वो पूर्व जन्म के, किसी की पानी में डूब कर मृत्यु हुई, बचपन से पानी का डर लगता है, किसी को सांप काटने से मृत्यु हुई, बहुत ही ज्यादा डर लगता है सांपों का, बहुत ज्यादा। हमको अपने भयों को समझना है, स्वप्न आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तल से आ रहा है, उसको भी समझना है, उसका सामना करना है, उससे भागना नहीं है भय से, जिससे डर लगता है उसको आंखों में आंखें डाल के देखो, भाग जाए जाए। एक दारू पीने वाला व्यक्ति है, रोज बहुत दारू पीता है और दारू पीने के बाद सब जगह सांप ही सांप दिखाई देते, बहुत डरता है वो, सांप सांप सांप, मैं क्या करूं सांप का, लोग कहते हैं वो सांप नहीं है, कल्पना है तुम्हारी, वो कहता है नहीं कल्पना नहीं है, सांप है, नहीं मानता है, कैसे उसको सांपों से मुक्ति दिलाए। एक दिन वो खुद ही एक पिंजड़ा लेके घूमता है, हाथ में पिंजड़ा, लोग कहते हैं पिंजड़े में क्या है, वो कहता है इसमें नेवला है। किस लिए नेवला, वो कहता है वो जो सांप है ना जो मुझे दिख रहे वो उनको मार देगा ये नेवला, इसलिए अब मैं इलाज मुझे मिल गया है, ये पिंजरा लेके घूमूंगा नेवला इसमें। लोग कहते पर वो सांप तो काल्पनिक है, वो कहता है नेवला भी काल्पनिक है, ये भी इमेजिनरी है। एक इमेजिनेशन को खत्म करने के लिए दूसरा इमेजिनेशन क्रिएट करना है, जिससे डर लगता है अब उससे बड़ा इमेजिनेशन इधर क्रिएट करना है तो वो खत्म होगा। तो भय स्वप्न आ रहे, शायद सोने की विधि गलत है, स्वप्न आ रहे, शायद बाबा को याद करके नहीं सो रहे, अमृत मुरली का चिंतन करके नहीं सो रहे, बिना गुड नाइट करके सो रहे, थक गए, लेट गए, सो गए, शायद सोशल मीडिया में लगे हुए और सो रहे, शायद फोन पर बातें चालू है फिर सो रहे, सोने की विधि गलत है, शायद दिनचर्या में अभी जो 26 मर्यादाएं बताई है जरूर कोई ना कोई मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न था पुराने नहीं अमृत वेला क्या मिस हो रहा है, क्योंकि संकल्प की कमी है। इसकी विधि है, अमृत वेला की किताब है एक यज्ञ में, अगले एक मास दिन रात ये किताब पढ़ते रहना, बस सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो, और कोई कुछ पढ़ना ही नहीं, एक ही किताब पढ़ते रहो और दिन रात अमृत वेले के विषय में सोचते रहो, क्या करो क्या करो, जल्दी सोने का अभ्यास करो, सुबह उठो, उठने के बाद भी नींद आती है तो चलते फिरते करो, कुछ सुनो, कुछ पढ़ो, वीडियो देखो पापा का, छत पर जाओ, गार्डन में जाओ अगर सहज जा सकते हैं, गैलरी में जाके करो, चलते फिरते करो, कैसे भी करो पर सोना नहीं है, बस ये लक्ष्य रखना है। अगर सब कुछ करके भी अमृत वेला नींद जागते नहीं है, अपने किसी दोस्त को कहो कि मुझे मिस कॉल करे, सब कुछ फेल हो गया, किसी को बोलो मुझे कॉल करते रहे जब तक मैं उठता नहीं। एक कुमार था जो अलार्म लगाता था रोज और सोता था, और फिर जैसे अलार्म बजता था हृदय से हाथ निकलता था और बंद, और फिर सो जाता था। उसने सोचा ये क्या करूं, रोज की मुरली में जैसे ही आता है सुबह सुबह उठो एकदम अंदर से तीर लगता है, आत्मग्लानी होती है, शर्म आती है ब्राह्मण परिवार के सामने, क्या करूं। उसने सोचा कुछ करता हूं, इलाज निकाला। उसने कहा मेरे बाजू खटिया के बाजू में जो दूसरी खटिया है ना उसके नीचे अलार्म लगता हूं ताकि अलार्म जोर से बजेगा, फिर मैं उठूंगा, फिर खड़ा रहूंगा, फिर नीचे घुसूंगा, तब तक तो नींद उड़ जाएगी। दूसरे दिन 4:15 बजे जोर से अलार्म बजता है, एकदम उठता है, कहाँ है, हाथ जाता है पर घड़ी तो वहां है ही नहीं, उठता है, घुसता है, अलार्म बंद करता है, वहीं सो जाता है। फेल, अलार्म फेल हो गया। किसी को बोलो कि मुझे कॉल करे, मुझे उठाए, और अगर सबसे बेस्ट बताया बहुत जल्दी सो जाओ, अपने आप जागाएगा, 9:30 बजे सो जाओ अपने आप उठेंगे, और नहीं उठ पा रहे शायद कोई दवाइयाँ ले रहे, कुछ मेडिसिन चल रहे उसका भी असर हो सकता है, शायद कोई बीमारी है, थायराइड है, ब्लड चेकअप करो पूरा, उसकी वजह से हो सकता है, और वो सब भी नहीं, अमृत वेला का महत्व ही नहीं समझा है, या फिर पता ही नहीं विधि करना क्या है, अमृत वेला उठ के करूँ क्या, मैं आत्मा हूँ, 10 साल पहले कॉमेंट्री सुनी थी कोर्स के समय, वही चालू है अब तक, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, इधर कोई इधर गिरता है, कोई इधर गिरता है, भयंकर द्वंद्व होता है, कोई इधर कोई उधर गिरा, कोई यहाँ गिरे कोई वहां, दिल के टुकड़े हजार, अमृत वेला म्यूजियम लगता है, कोई शीर्षासन करता है, कोई कौन सा आसन करता है। हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी पहले, अभी बाहर गई है पढ़ाई के लिए, तो वो बीच बीच में आती है, उसने एक बार अनुभव सुनाया था, और जब लोग बाहर से मधुबन आते हैं तो एकदम नशा चढ़ जाता है, 2 बजे अमृत वेला करना है, 2 बजे उठ गई बाबा के कुटिया में बैठी, और 2 बजे बैठी थी, नेक्स्ट जब देखा तब 5 बज रहे थे, बिल्कुल कुछ सेकंड में 3 घंटे कैसे बीतल के पता ही नहीं चला, इतना फास्ट जीत गए कि जब बैठी तब तो 2 थे, और थोड़ी देर के बाद देखा तो 5, बीच में क्या हुआ पता ही नहीं, कितने झुटके लगे और क्या लगे, और जैसे बताए झुटके लगने के बाद व्यक्ति सबसे पहला काम क्या करता है, कोई देखा तो नहीं किसी ने, और उसने ऐसा किया और पता चला पीछे 3-4 लोग बैठे हैं सोफा पर, अब तो इज्जत का सवाल था, उन्होंने देख लिया होगा, तो उसने पीछे मुड़ के देखा 5 माताएं थी, 5 सो रही थी, तब कहीं जाके थोड़ी राहत मिली, 5 के 5 सो रही। तो अमृत वेला शक्तिशाली हो, नींद ना आए, व्यर्थ ना चले, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अमृत वेला की हम लोगों की एक सीरीज है बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे भाई बहनों को हमने होमवर्क दिया था, कम से कम 15 लेक्चर्स है अमृत वेला की, अलग अलग समस्या है, वो एंजल ऑफ शिवा, वो एक वेबसाइट है, उसमें जाके आप वो सीरीज की लेक्चर्स है वो एक एक सुन सकते हैं। तो अमृत वेले के बारे में पहले ज्ञान बढ़ा, बाबा के महावाक्य क्या क्या है, समस्या क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्यों नींद आती है, रिसर्च करो अमृत वेले के, तब कहीं ये काम होगा, नहीं तो बस ऐसे ही चालू रहेगा सोना बस। तीसरा संस्कार, ये तो बड़ा प्रश्न है, संस्कार जैसे अभी शौक बताए साथ, जैसे वो आदतें बन गई, अब नई आदतें क्रिएट करो, नई आदतें, नेवला खड़ा करो, सांप दिख रहे हैं ना, अब नेवला लाओ, काउंटर करो, अपोजिट आदतें निर्माण करनी, अब पवित्रता की आदतें, अब प्यूरिटी की आदत निर्माण करो, टाइम वेस्ट करने की आदतें, अब चिंतन की आदत, व्यर्थ गपशप करने की आदत है, आप ज्ञान की चर्चा करो, अपोजिट संस्कारों का निर्माण, तो पुराने अपने आप भस्म होंगे। नेक्स्ट,
मैं वर्किंग हूँ एज ए टीचर, मेरा क्वेश्चन है कि लौकिक और अलौकिक कर्तव्यों में बैलेंस कैसे रखें, और फिर ये नहीं बताया कि पांडव भवन समर्पित होने या क्या है, पांडव भवन तक पहुँचने तक हम या सेवा अर्थ में हम किस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पांडव भवन में हम जा सके,
अभी तक गए नहीं कभी,
समर्पित की बात है, ये नहीं पता बताया पांडव भवन तक पहुंचने तक,
पहुंचने मतलब सेवा के लिए या बाबा से मिलने के लिए, अच्छा चलो,
अरे ऐसे नहीं है
तो बैलेंस, बैलेंस बहुत बड़ी कला है और जो हर एक को सीखनी पड़ेगी, वो कोई सिखा नहीं सकता, हर एक अपने ही अनुसार सीखेगा, अपने अनुभव से ही सीखेगा। डालियां किसके लिए बचती है, रास्ते पे चलने वालों के लिए या रस्सी पर चलने वालों के लिए, रस्सी पर चलना अर्थात बैलेंस सीखना पड़ेगा, और बैलेंस में दो चीजें, एक इधर एक इधर, लौकिक भी ठीक हो अलौकिक भी ठीक हो, सबसे पहले दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी, कितना समय सेंटर पर जाना है, कितना समय सेंटर की सेवा करनी है, कितना समय मुरली के लिए देना है, कितना समय अमृत वेला देना है, एक तो अलौकिक सारा और फिर लौकिक, ऐसा ना हो कि लौकिक अलौकिक के वजह से लौकिक कमजोर पड़ जाए। स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन शुड नेवर बी मेड एन एक्सक्यूज फॉर मटीरियल निग्लिजेंस, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये इंग्लिश का, स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन शुड नॉट बी मेड एन एक्सक्यूज फॉर मटीरियल निग्लिजेंस, ये काम क्यों नहीं किया, हम मुरली गए थे इसलिए नहीं कर रहे, ये रह गए, कर्तव्य हमेशा फर्स्ट है, अगर घर में पति है उसको ऑफिस जाना है पहले उसकी सेवा, बच्चे हैं उनको भी देखना, इसको एडजस्ट करना है अलौकिक को, नहीं तो अलौकिक कारण लौकिक लापरवाही के लिए देना ये डिससर्विस है, अलौकिक कारण देना लौकिक लापरवाही के लिए ये डिससर्विस है, कोई घर में बीमार पड़ा है और हम बैठे हैं भट्टी में, कर्तव्य पहला क्या है हमारा, सेवा, हमें याद है बाबा के अवतरण में बैठे थे, वक्त मुरली चालू है 2015 या 14 में, बाबा सामने डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बैठे थे, उन्होंने कहा वो वंदना माता जो है ना संगम भवन की हॉस्पिटल में ट्रॉमा में एडमिट है, आप एक बार जाके देखोगे, अब भगवान सामने बैठा है और ट्रॉमा में, हम हैं नहीं, हम तो ऊपर है ग्लोबल में है, वो तो नीचे है, तो हमने कहा, फिर उन्होंने वहीं पे उनका रिपोर्ट दिखाया, ये रिपोर्ट है, वो बाईपैप लगा के रखा है, तो हमने देखा और अब सोचा कि क्या करूं, जाऊं कि मना कर दूं, मना कर भी दिया तो कुछ होता नहीं था, पर हमको ऐसे लगा कि जाना चाहिए, और वो बाबा और अवतरण को वहीं छोड़ दिया और गए, और देखा तो वो माता अभी भी है एकदम पूरा ब्रेथलेस, बस अब जाने वाली है, तुरंत उसका वो हटाया और उसको वेंटिलेट किया, उसको इंटुबेट किया, उसको वेंटिलेटर पे डाला, वो सब मैनेज करते करते जब आए तब तक बाबा निकल चुके थे, पर वो बच गई, नहीं तो मर गई होती वहीं पर। तो जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ गौण है, सब कुछ जो सेवा दी गई है वो प्रथम, वो फर्स्ट, जो लौकिक हो अलौकिक हो वो करते हुए अलौकिक को मैनेज करना है, ये कारण नहीं दे सकते मुरली में कहते करके घर के काम नहीं किए, वो भी करो, जल्दी उठो, जल्दी उठ के करो, सारा कुछ करो, और ये भी करो, ये छोड़ के वो करना, वो छोड़ के ये करना, ये नहीं करना है, तो बैलेंस जैसे कहा, हर एक अपने अनुभव से ही सीखे, और जो अनुभवी लोग हैं जो उसी तरह के जॉब करते हैं, टीचर्स कितने सारे बीके टीचर्स होंगे, वो लोग कैसे करते हैं, उनको पूछो। डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को पूछे, इंजीनियर इंजीनियर को पूछे, वकील वकील को पूछे, दुकानदार दुकानदार को पूछे, कैसे बैलेंस करे, कितने तक दुकान चलाए, रात को 11 बजे तक कैसे पुरुषार्थ करोगे, कितने बजे चालू करे, कैसे पुरुषार्थ करेंगे, कैसे मुरली चालू करेंगे, सेटिंग खुद ही करेंगे।
लौकिक बिल्कुल ही छूट जाते हैं,
लौकिक छूटना नहीं चाहिए, अलौकिक भी छूटना नहीं चाहिए।
उसके लिए तो मैक्सिमम एक्सक्यूज होते हैं ना कि ये है ये है।
हाँ, इसके लिए कहा ना लौकिक छूट जाता है,
अलौकिक भी छूट।
हाँ, अभी ये तो हमने बात बताई लौकिक के महत्व की, अब है अलौकिक का भी महत्व है। लौकिक में इतना डूब गया है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है इतना डूबने की। और फिर अमृत वेला मिस क्यों, रात को 11 बजे घर आ रहा है, कैसे होगा अमृत वेला। दिनचर्या को इतना टाइट करके रखा है, इतना ट्रैवलिंग है, 4 घंटा ट्रैवल करते, 2 घंटा ट्रैवल करते, थक जाते हैं, पार्ट टाइम कर दो उसको, अब समय कहाँ है, मुरलियां पढ़नी बाकी है, कितने सारे काम बताए हैं अलौकिक के, अभी तो मुरलियों का अध्ययन है, ज्ञानामृत है, ड्रिल्स करनी है दिन भर में, सेंटर मुरली सेवा, ये भी छूट जाता है कईयों का तो, क्योंकि महत्व ही नहीं देते इसको, लौकिक में ही डूबे हुए, बिजनेस में डूबे हुए, घर के कामकाज में डूबे, या भोजन में डूबे हुए, या रिश्तेदारों की शादी और उसमें डूबे हुए, ये सब व्यर्थ है, किस लिए कर रहे हैं ये, ये दुनिया छोड़ दी, लौक लाज की अब परवाह नहीं करनी है, ये जो व्यर्थ के काम है, जहां बहुत जरूरी है वहां जाओ बस और निकल के आ जाओ। व्यर्थ का विस्तार करना मतलब अलौकिक को कॉम्प्रोमाइज करना है। नेक्स्ट।
मेरा पैसा कई व्यक्तियों के पास है जो नहीं दे रहे हैं, टाल मटोल करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं।
एक भाई था सेवा केंद्र का, उसके दूसरे ही सेंटर पे ही आने वाले एक भाई ने एक बार कहा कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, 5,000 रुपए दे दो। तो उस भाई ने जो रोज साथ में ही मुरली सुनते हैं, उन्होंने कहा हाँ मदद तो करनी चाहिए, तो मदद कर दी उसको, और जिसने पैसे लिए वो भूल गया बाद में पैसे देना है करके, पैसे जिसने लिए वो देना है ये भूल ही गया, दिए ही। अब बेचारा जिसने दिए थे वो परेशान, बोले भी तो कैसे बोले, योग में बैठते हैं, वो सामने आके बैठता है, उसको देखते ही 5,000 5,000 5,000 मुरली क्लास में आके बैठते हैं, वो आगे बैठता है, वो सामने से आके उधर बैठता है, उसको देखते ही 5,000 बाबा इसको टच कराओ, 5,000 5,000 5,000 पहले तो देना ही नहीं है और लेना भी नहीं है, दोनों चीजें, नाइदर बी अ लेंडर नॉर अ बोरोअर, ना देना ना लेना। अब दे दिए, अब क्या, फिर ये भाई इतना परेशान, फिर युगलों की भट्टी थी, तो बेचारा जिसने दिए थे, जिसने जिससे लिए थे, वो मधुबन गया और बाबा के सामने फिर समर्पित कर दिया, बाबा मुझे नहीं चाहिए पैसे, अब परेशान हो रहा हूँ, पागल उसी के थे, उसने ले लिए, जाने दो उसके पास, अब क्या करे, कितना परेशान हुआ आखिर आदमी, भट्टी में आए हैं, मोबाइल बंद कर दिया और फिर बाबा को अर्पित कर दिया, और जब मोबाइल ऑन किया 4 दिन के बाद, वो भाई का मैसेज और फोन, अरे तुम कहाँ हो, मुझे आप तुम्हारे पैसे वापस देने थे ना। तो सबसे पहली बात तो हमने अगर दिए हैं और वो नहीं दे रहे, टाल मटोल कर रहे हैं, शायद हमसे देने में गलती हो गई, पहचानने में गलती हो गई लोगों को, अगर दे तो बहुत ठीक, परंतु हम कब तक अपने आप को परेशान करके रखें, कब तक अपने आप को पागल कर दे कि वो देगा, कितना योग डिस्टर्ब करे, बुद्धिमानी इसमें नहीं है, दे दिए छोड़ दो, भूल जाओ उसको, दे तो दे, नहीं तो शायद उन्हीं के होंगे, उनके पास चले गए, नहीं चाहिए हमको पैसे, ऐसा जब संकल्प आएगा ना तो उनको संकल्प आएगा कि देना है, तभी संकल्प आएगा। हमारी आसक्ति है, शायद पश्चाताप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे, छोड़ दो, नहीं थे हमारे थे ही नहीं, हिसाब था पूरा हो गया, फुल स्टॉप, अब अगली बार से किसी को ना देंगे ना लेंगे। अगर ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने लिए, दे तो बहुत अच्छा, न दे बहुत अच्छा, हमारे थे ही नहीं, बस फुल स्टॉप लगा दो। कितना परेशान होंगे अपने आप को, कितना और अमृत वेला नष्ट करेंगे और ज्ञान योग को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हो गया ना, भूल जाओ उसको, फुल स्टॉप। नेक्स्ट,
जैसे हम कहते हैं कि फल की इच्छा नहीं रखनी है निष्काम सेवाधारी, तो फिर जब कहते हैं कि 108 की माला में आना, ये भी तो इच्छा है।
इस पर हमने अभी भी चर्चा की है शायद ना, यहाँ या मधुबन, इच्छा है हाँ मधुबन में आने से पहले, इच्छा मात्रम अविद्या ये तो कहा है, पर कौन सी इच्छा मात्रम अविद्या? विकारी इच्छा है, सांसारिक इच्छा है, व्यर्थ की इच्छा है, विकारी वेस्ट निगेटिव इच्छा है, ये सब नहीं होनी चाहिए। हमें जो इच्छाएं चाहिए, कौन सी इच्छाओं के बिना हम नहीं जी सकते। हमें इच्छाएं चाहिए, परंतु कौन सी इच्छा है? अलौकिक इच्छा है, श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा है, शुद्ध कर्म करने की इच्छा है, बाप समान बनने की इच्छा है। इच्छाओं के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। इच्छा है तो सागर है, परंतु इच्छा की दशा और दिशा बदलनी है, बस ये काम करना है। इच्छा मात्र अविद्या अर्थात बाप समान बनना है, ये इच्छा इसके लिए नहीं कहा है। वो तो संसार की विकारी विस्तार पैसा ये सब, ये सारे इसके लिए कहा है बाबा, इसके लिए नहीं। नेक्स्ट,
त्रेता रेगुलरिटी का गुण धारण कैसे करें समझ होते हुए भी?
कौन सा गुण? कौन सा गुण?
त्रेता और रेगुलरिटी,
और
रेगुलरिटी
धैर्यता,
रेगुलरिटी
रेगुलरिटी गुण कैसे धारण करें? रेगुलरिटी का हो या पंक्चुअलिटी का हो, ये एक संस्कार है। जब भी कोई गुण धारण करना होता है, पहले बैठ के ये लिखना है कि वो गुण न होने से क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है, बैठ के लिखो काम से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। दृढ़ता नहीं हो रही है तो क्या क्या नुकसान हो रही है, रोज संकल्प करते करेंगे वो करेंगे और करते कुछ नहीं, कितना नुकसान हो रहा है। रेगुलरिटी, एक दिन करते दूसरे दिन नहीं करते, चार दिन गायब, एक दिन अमृत वेला फिर गायब, भट्टी हुई तो सब आ जाते हैं, भट्टी खत्म खलास। नुकसान दिखना है इररेगुलरिटी से, क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे एक चर्च में एक पादरी का अंतिम दिन होता है, 40 साल उसने सेवा की है उस चर्च में एज अ बिशप, एज अ प्रीचर पास्टर, और जाने का जब दिन होता है तब उसके सत्कार में थोड़ा फंक्शन रखा जाता है, और जो उस शहर का मेयर होता है उसे बुलाया जाता है एज अ चीफ गेस्ट, पर मेयर को आने में लेट हो जाता है, तो वो पादरी को कहते हैं सब लोग आप ही अपना भाषण चालू कर दो, वो अपना भाषण चालू करता है, और पादरी कहता है 40 साल पहले मैं इस शहर में जब आया था पहली बार, और जो पहला आदमी आया था मेरे पास, क्रिश्चियन में होता है कन्फेशन, सबने पापों का इजहार करते हैं कि मैंने ये पाप किए, और वो जो पहला आदमी आया था उसने इतने पाप गिनाए अपने, मैं तो आश्चर्य हो गया मैं किस शहर में आ गया, यहाँ इतने बड़े बड़े पापी हैं। वो पादरी कहता है मेरा पहला दिन था, कन्फेशन कर लिए, एक व्यक्ति आया और उसने इतने सारे लिस्ट गिनाई, मैं तो दंग रह गया, कैसे होगा, कैसा ये शहर होगा। परंतु अच्छी बात यह है कि वो पहला ही आदमी था, उसके बाद ऐसा कोई भी नहीं आया, और मेरे ये 40 साल बहुत अच्छे गुजरे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। भाषण पूरा होता है तब तक मेयर साहब आ जाते हैं, और फिर मेयर अपना भाषण चालू करता है। मेयर कहता है मुझे गर्व है कि हमारे जो पादरी है जो 40 साल से यहाँ है, और मैं वो पहला व्यक्ति था जो इनके पास आया था, अब उसे ये पता ही नहीं इन्होंने पहले क्या किया था। लेट आना, इरेगुलर होना, ये सारे अवगुणों की लिस्ट में आता है। बार 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 इरेगुलर, मुझे ही तो नुकसान हो रहा है उससे। नुकसान की लिस्ट निकालनी है और फायदों की लिस्ट निकालनी है। वो होने के बाद क्या फायदा है, न हो रहा है तो क्या नुकसान है, अपने आप वो गुण आते जाएगा। नेक्स्ट,
संस्कार परिवर्तन खुद के पुरुषार्थ से होता है या महान आत्माओं की दृष्टि से?
पुरुषार्थ से, वो दृष्टि वगैरह कैटलिस्ट है, वो थोड़ा सा काम कर देंगे, पर पहले तुम खुद करो। जैसे गाड़ी बैलगाड़ी जा रही है, गड्ढे में गिर गई, व्यक्ति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती उलोक उजागर निकलेगी क्या होगा? खुद परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, उद्यम करो तो निकलेगी। किसी का गुणगान गाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, तुम अगर पुरुषार्थ करो तो हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे दृष्टि देने ऊपर से। नेक्स्ट,
ज्ञान में आने के बाद समझ आई क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध आ जाता है।
समझ अर्थात परिवर्तन, समझ अभी अभी आई नहीं है। इसके लिए अव्यक्त तो मुरलियों में क्या आता है? समझा, समझा क्यों आता है? उसको डाउट है, वो संदिग्ध है थोड़ा, शायद नहीं समझे। क्रोध एक पागलपन है, क्षणिक पागलपन। हमने जो क्रोध किया, अब थोड़ी देर बाद उसकी वीडियो देखो, ये मैं क्रोध कर रहा हूं, हमको लगेंगे ये मैं था, ये मैं हुई नहीं, ऐसा अनुभव करेंगे। क्रोध में हम स्वयं नहीं रहते, कोई दूसरा आ जाता है उसमें, वो देहभान की अवस्था है। मैं नहीं रहता हूं, मैं तो कितना है अमृत वेला। अगर अगर हमें कोई कहे जबरदस्ती क्रोध करके दिखाओ, बड़ा मुश्किल है। क्यों? अभी कोई कहे कि क्रोध करो, जोर जोर से चिल्लाओ और क्रोध करो, सब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए अगर होता तो 24 घंटे हम क्रोध करके दिखा सकते हैं। अभी अभी मुरली चली थी शांतिवन में, सबने सुनी ना? उसमें बाबा ने कहा लिस्ट निकालो जो क्रोध से परिवर्तन हुए, सुनी थी? लिस्ट निकाल के बाबा को बताओ कि जो तुम्हारे क्रोध करने से जो परिवर्तन हुए उसकी लिस्ट निकाल के दिखाओ। कोई भी नहीं, बड़ा होगा, जूनियर होगा, सीनियर होगा, दोनों उदाहरण दिए थे बाबा ने। अंदर में दिल खाता रहेगा, जलता रहेगा और रोएगा। तो क्रोध से होने वाले नुकसान, दूसरा क्रोध के एंगर मैनेजमेंट के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वो सुनो। एक बार एक स्पीकर ने एंगर मैनेजमेंट पर कोर्स कराया, लेक्चर दिया, एक घंटा क्लास कराया। क्लास करा के बाहर निकला, एक भाई ने उसे कुछ पूछा ऑडियंस में से, और इतना चिल्लाया उसको, यू फूल, ऐसे प्रश्न पूछते हो इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद? और वो खुद क्रोध। बहन जी है, टाइम मैनेजमेंट पर सेमिनार कराने जा रही है एक बहन जी। ट्रेन एक जगह रुकी, वो उतरी और कुछ खरीदने में लग गई, ट्रेन चली गई। किसने कोर्स कराने जा रही थी? सेमिनार टाइम मैनेजमेंट पर। क्रोध को जीतना बहुत लंबी प्रक्रिया है, और क्रोध अंधकार है, प्रकाश को लाना है, अपने आप चला जाएगा। प्रेम को लाना है, जीतना नहीं पड़ता है उसको, अपने आप विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बुक्स पढ़ो, लेक्चर सुनो, योग को बढ़ाओ, अपने आप क्रोध चला जाएगा। ज्ञान को बढ़ाओ, अपने आप क्रोध चला जाएगा। नेक्स्ट,
पहला वृक्ष में सभी धर्म दिखाए लेकिन जैन धर्म क्यों नहीं दिखाए?
वो है ना झाड़ के पीछे, देख ले, झाड़ के पीछे है वो। वास्तव में जैन धर्म, बौद्ध जैन धर्म दोनों साथ साथ थे, महात्मा बुद्ध और जैन समकालीन थे दोनों। बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार है, जैन धर्म का इतना नहीं है। वास्तव में जैन धर्म के ही जो देवी देवता धर्म के लोग थे और उनके जो बहुत सारे फॉलोअर्स है, वो सब यही देवी देवता हुए होंगे, ऐसा अंदाज है। कुछ आत्माएं तो ऊपर से भी आई होगी, पर बहुत सारे इस देवी देवता धर्म की उसमें चली गई और फिर बाहर निकल के अभी आ गया। तो जैन धर्म का ऐसा कोई चित्र उसमें नहीं दिखाया है। और वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में टोटल 4,200 रिलीजन्स हैं, वो सब भी कहां दिखाया है? 4,200 धर्म है संसार में, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट। उसमें से 120 धर्म मुख्य है, उसमें से 12 मुख्य है, उसमें से 4 मुख्य है जो मुरलियों में आते हैं, 4 ट्यूब, और उसमें से एक ही है जिसमें हम हैं, देवी देवता वाला। तो धर्म का तो बहुत वैसे बड़ा टॉपिक है, इसको यहीं छोड़ते हैं।
कोई भी जो बात व्यर्थ या बीत गई, किसी की कही हुई अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, उसे कैसे निकालें? और घुटने में तकलीफ है, डॉक्टर्स कहते हैं लहसुन खाओ।
नहीं, पहला एक ये प्रश्न वो दूसरा है। पहला
अनकॉन्शियस माइंड में चलेगी कैसे?
वो जो बास्केट है ना, वो जो टोकरी, उसको पानी में डुबोते जाओ निकालते जाओ, पानी में डुबोते जाओ निकालते जाओ। अवचेतन जो मन है, हिस्सा है जो छिपा हुआ है, एक नौवा भाग अवचेतन मन है, एक भाग चेतन मन है, और इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। तो अवचेतन मन तक पहुंचने की दो विधि है, एक है विजुअलाइजेशन, दूसरा है अफर्मेशन। अमृत वेला विजुअलाइज करना है, उस आत्मा को इमर्ज करना है, वो बात को वापस लाना है, देखना है उसको, और उसको न्यूट्रलाइज करना है। जैसे वो वेल्डिंग मशीन से कैसे न्यूट्रल ये करते हैं वेल्डिंग, कॉटराइजेशन से कहीं ब्लड आ रहा है तो कॉटरी करते हैं, उसी तरह अवचेतन मन में जो ब्लीडिंग स्पॉट्स है, जहाँ हर्ट हुआ है हमको, किसी ने बहुत दुख दिया था, अमृत वेला उस साक्षी भाव में उस स्थिति को देखना है, इमर्ज करना है और संकल्प करना है, इस आत्मा को अपनी सारी कमियों के साथ मैं माफ करता हूँ, इसने जो कुछ भी किया मेरा ही हिसाब था, माफी मांगना, माफ करना बार बार रोज आत्माओं को। धीरे धीरे हम उसके प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे, जो अवचेतन मन में हर्ट हर्ट, नहीं तो वो अवचेतन निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, हमको दुखी करते रहेगा। इसके लिए आत्माओं को माफ करना करना एक विजुअलाइजेशन, दूसरा है अफर्मेशन। अफर्मेशन अर्थात रिपीट करना, कोई समान मैं इस संसार की महान आत्मा हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं हो सकती, नफरत नहीं हो सकती, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्वामित्र हूँ, सभी मेरे मित्र, जिसने जो कुछ भी मेरे साथ किया मेरा अपना हिसाब था, फुल स्टॉप, मैं माफ करता हूँ। रोज रिपीट करते रहना और अमृत वेला करना है तो अवचेतन मन तक पहुंचेंगे। दूसरा प्रश्न,
घुटनों में दर्द है तो डॉक्टर लहसुन खाने के लिए?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लहसुन बिसन से घुटने का दर्द ठीक हो गया, ऐसी कोई स्टडी अगर होगी भी तो मेन तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो गद्दी होती है वो घिस जाती है। अभी कुछ हर्बल गोलियां भी आई है, इससे काफी डॉक्टर्स यूज करते हैं मैकवेस्टिन, उसके काफी अच्छे रिजल्ट है। अल्टीमेट तो घुटने का ऑपरेशन वो भी बताते हैं, पर कई लोग जो है ऐसा देखा गया है कि जिनको बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है और कहा कि अभी के भी ऑपरेशन करो, उन्होंने अपने डाइट को चेंज किया और डाइट को चेंज करने के बाद उनको उनका दर्द चला गया और अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे मोटापा है उसको कम करना है, खान पान किस तरह का है, और बेस्ट एक इलाज है कि जितना डाइट नेचुरल होगा ये सारे जो दर्द वगैरह धीरे धीरे ठीक होगी। कई लोगों ने ऐसा किया हुआ है, पर आजकल तो जैसे उधर भी हॉस्पिटलों में सब जगह ऑपरेशन करके रिप्लेसमेंट कराते हैं, पर जिनको नहीं कराना है वो कुछ डाइट चेंज मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मेडिकल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी पूरा करते हैं।
जैसे हाँ बसना ये कहते हैं भी कोई भी सेंटर से हमें कोई भी बताते हैं कि कोई आने वाला है बाहर से, योग पट्टी रखी है या क्लास रखी है, उसी समय में अगर घर से ही वीकेंड आ जाता है, कोई गेस्ट आ गए हैं
अपनी भट्टी खुद ही करनी, खुद ही डिसाइड करो आज मेरी भट्टी, हर दिन भट्टी, हर दिन अपनी ही तपस्या कुंड में बैठ जाए। हाँ, कोई आता है और कराता है बहुत अच्छा अगर उसमें अवसर मिल जाए, परंतु परिस्थितियां तो जो होगी वो है, हमें उनका भी सामना करना है, घर को भी देखना है। ऐसा नहीं कि घर में हलचल चालू है हमें यहाँ शांति से बैठे हुए और उधर हंगामा कर रहे हैं, हमारे नाम से चिल्ला रहे हैं, वो भी डिससर्विस होगी। जैसे कहा, कर्तव्य जब पुकारे सब कौन है, कर्तव्य के सामने उसको छोड़कर व्यक्तिगत करना कुछ वो स्वार्थ हो जाएगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि ऐसी एडजस्टमेंट करना उधर, ताकि भट्टी भी कर सके, मधुबन भी जा सके, सेंटर भी आ सके और उधर कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, यह तो उस परिस्थिति को देखकर ही इसका उत्तर बताया जा सकता है, हर एक की क्या परिस्थिति है। और दूसरी बात, शायद व्यक्ति ने वैसा ही सोचा हो इसलिए वो हुआ, सोचा होगा। जैसे एक उदाहरण है मनोविज्ञान का, बड़ा सा रास्ता है सड़क, ठीक है, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और एक कोने में पत्थर रखा हुआ है बहुत बड़ा, पर एक कोने में है, रास्ता बहुत चौड़ा है, वो जा सकता है। व्यक्ति सोचता है मुझे उस पत्थर से टकराना नहीं है, मुझे उस पत्थर से टकराना नहीं है, मुझे उस पत्थर से टकराना नहीं है, मुझे उस पत्थर से टकराना नहीं है। धीरे धीरे साइकिल उधर जा रही है, किधर, पत्थर की ओर, रास्ता बहुत चौड़ा है, जा सकता है। सोचता है मुझे पत्थर से टकराना नहीं है, नहीं है, नहीं, मैं नहीं टकराऊंगा, नहीं टकराऊंगा, और धड़ाम टकरा दिया। क्यों, भट्टी होने वाली है, कोई भगवा कोई मेहमान ना आ जाए, भट्टी होने वाली है, बाबा घर में कोई मुश्किल ना हो जाए, ऐसी ना हो जाए, वैसी ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, बारिश ना आ जाए, और धीरे धीरे पत्थर, रास्ता चौड़ा है, ये ना हो जाए, 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 और टकराता। परिस्थितियों का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हमने सोचा है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ना हो, ऐसा होगा। अवचेतन मन ये भाषा नहीं समझता, हाँ ना ना, वो स्वीकार कर लेता है अंदर से, और परिस्थितियां निर्माण हो जाती हैं। तो ऐसा सोचना ही क्यों, पहले से ही सोचना चालू करते, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहिए, मैं बीमार नहीं पड़ू, मैं बीमार नहीं पड़ू, मैं बीमार नहीं पड़ू, ऐसा नहीं, मैं निरोगी हूं ये संकल्प करो। ये सोचो अपने आप को भट्टी में, आज 10 दिन के बाद भट्टी है, यहीं से देखो मैं भट्टी में बैठा हूं, भट्टी चालू, मैं तपस्या कर रहा हूँ, अपने आप होगा। पहले से सोच रहे मेहमान ना आ जाए, जो मेहमान आने वाला भी नहीं होगा ना, उसको टच होगा उधर, इधर जाना चाहिए बराबर यही डेट को, पहुंच जाएगा पेशेंट को, उधर घर में पता चलेगा ये डॉक्टर साहब है, इसको कहीं जाना है, बराबर उसके जाने के टाइम पे मुझे पहुंचना है बीमारी लेके, इधर दर्द दर्द आए। नेक्स्ट,
ये मेजॉरिटी का ही क्वेश्चन रहता है कि जैसे अज्ञान काल में हम संबंधियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, लेन देन जो भी करते थे, व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन ज्ञान में समझ आने के बाद वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, तो वो नाराज रहते हैं। और जैसे बच्चे भी हमें कहते हैं कि हमारे पास शिफ्ट हो जाओ, लेकिन हमें लगता है वहाँ पर पुरुषार्थ नहीं हो सकता, तो हम क्या करें।
ये निर्णय तो हमें खुद ही लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। अगर बच्चों के साथ रहकर हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और दूसरी बात, अब वो बच्चे हमारा दायित्व नहीं रहे, उनके लिए जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब उनका अपना जीवन है, हम अपना जीवन है, हमारी खुशी इसमें है, हम ये करेंगे। मधुबन में कितने मधुबन निवासी है जो बूढ़े हो गए हैं, वो कई बार सोचते हैं हम घर जाए, लौकिक घर जाए, अपने बेटे पोतों के पास जाए, पर वहां जाते हैं 4 दिन रह के वापस आ जाते, कहते हैं वहां की दिनचर्या सेट नहीं होती उनको, सेंटर इतना दूर है, वो बेटे अपने नौकरी पर चले जाते हैं, मैं दिन भर करूँगा, तो कहते हैं हमको यही ठीक है। तो ये डिसीजन तो खुद ही लेना है, बच्चों के पास रहना है, खुद रहना, अकेले रहना है। दूसरा, पहला प्रश्न था मित्र संबंधी, अब मित्र संबंधी वो तो जो है वो है, उनके साथ में ज्ञान में आने के बाद वैसा ही व्यवहार रहेगा ये जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है, क्योंकि अब हमारी टेस्ट, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय सब कुछ बदल गया, हम उनके साथ कैसे रह पाएंगे। तो उनको भी बड़े प्यार से समझा देना है कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, जीवन की प्रायोरिटीज बदल गई है, वो जीवन अलग था, ये जीवन अलग। जैसे हमारा एक दोस्त है, बचपन से दोस्त है, ठीक है, और फिर वो एक बार कहीं विदेश चला गया, बाहर चला गया, और उस समय हम ज्ञान में आ गए, अभी ज्ञान में 5 साल से चल रहे, बाहर का खाना बंद, सब कुछ बंद, और वो दोस्त वापस आता है, कहता है अरे चलो आज जाते हैं थोड़ा घूमने फिरने जैसे पहले करते थे, हम क्या करें, बोलो भाई बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या हम मना कर देंगे उसको, अरे वो बचपन का यार है, कौन सा तुमने ऐसा ज्ञान ले लिया कि दोस्ती भूल गए। मधुबन घुमा, वो बोलेंगे पहले वहां घूमते जहां हम पहले घूमते थे दोनों, बाद में जाएंगे तुम्हारे मधुबन, उसको बैठ के अच्छे से समझाना है। एकदम नाराज नहीं कर देना है, भले जाओ खाओ नहीं कुछ, पर समझाना है अब हमारा जीवन बदल गया, जीवन की प्राथमिकता प्रायोरिटीज अलग है, अब हम ऐसे हैं, अब वो वाली दिनचर्या हमारी नहीं है, क्लियर कट बता देंगे, नहीं तो फिर दुखी होते रहेंगे। ठीक है,
क्लास टेन के थे 63 साल की उम्र हो गई, उस समय पहले ज्ञान मिला, उससे पहले भक्ति में थी, तो भक्ति भी उसी तरह से टूट गई, ग्रंथ रखे घर में, फोटोज रखी हुई हैं, अब डर लगता है उन फोटो को निकाले रखे।
फोटो को भले रहने दीजिए, जो है फोटो से क्या होता है, बुक्स भी रहने दीजिए फोटो भी रहने दीजिए, अब उन्हीं को इस ज्ञान के साथ जोड़ना चालू कर देना, उसी को इस ज्ञान के साथ जोड़ना चालू कर दूंगा। उसमें भी ज्ञान की कितनी बातें भरी पड़ी है। मधुबन में हमने एक सीरीज चालू की थी सुखमनी पर, वो बीच में फिर बंद करनी पड़ी क्योंकि वापस चालू करेंगे कुछ समय के बाद, फिर दूसरी सीरीज चालू हुई। तो जितनी भी धार्मिक लिटरेचर है ग्रंथ साहिब से लेके सब कुछ, सब में अथाह ज्ञान का भंडार है, अथाह ज्ञान, और उस सारे ज्ञान को भरना है। और मुरली की जितनी सारी बातें आती है वो सारा मैक्सिमम सिख लिटरेचर से लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंध हैदराबाद में सिख का प्रभाव, सिखिज्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था। बहुत सारी बातें, ये पांच विकार कहां से आए? सिख लिटरेचर। पंचचूर कहां से आए? सिख लिटरेचर से। बाकी वेद शास्त्र उपनिषद में ऐसा नहीं लिखा ये पांच विकार, ये यहां से लिया हुआ है। मैक्सिमम चीजें जो मुरलियों में आते हैं, जो शब्द, वो सब कुछ सिख लिटरेचर से। तो अब उस लिटरेचर को वापस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अलौकिक रीति से पढ़ो, इस ज्ञान के साथ उसको जोड़ते चलो। चित्र रखे हैं, रखे हैं, महान आत्माएं हैं वो सब, रहने दो उनको जैसा है वैसा। बुद्धि एक से लगानी बस, वो भी तो वही कह रहे हैं, एक से लगानी, वो एक ही ओंकार निराकार है। द्वंद ना हो उसको सीढ़ी बना के आगे बढ़ना। ओम शांति।
ओम शांति। अभी टोली मिलेगी, और लेकिन जिन्होंने कल गिफ्ट नहीं लिया उसमें से कुमारियों ने नहीं लेनी है गिफ्ट, और जिन्होंने कल ले चुके हैं वो भी नहीं लेंगे, और सिर्फ टोली लेंगे, और बाकी सब सौगात साथ में लेकर के जाएंगे।